फजैल बिन अयाद के बारे में आप जानते होंगे, ही वॉज बेसिकली अ रॉबर और ताबी ही हैं ताबी। तो हुआ क्या, जब वो एक घर में चोरी करने के लिए जा रहे थे ना, यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग उनसे डरा करते थे कि यार फजैल ना आ जाए, फजैल ना आ जाए। तो एक घर से गुजर रहे हैं, अच्छा उस अंदर गए हैं और चीज़ें ढूंढने के लिए पहले घर का ना पूरा सर्वे कर रहे हैं। वॉट हैपन्ड वॉज कि अंदर से ना किरत की आवाज़ आ रही थी आयात, और सूरह हदीद की आयत तिलावत की जा रही थी। आयत ये थी, अलम यअनी लिल्लज़ीन आमनू अन तख्शअ कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि क्या मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए वक्त नहीं आ गया कि उनके दिल अल्लाह ताला की याद से डर जाएं, लिज़िक्रिल्लाह अल्लाह ताला के ज़िक्र से डर जाएं। ये आयत उन्होंने जब सुनी ना, उसी वक्त ही उनके दिल पर इतना गहरा असर हुआ था कि वो कहते हैं भला या अल्लाह, यानी वो वक्त आ चुका हुआ है। तो वो उसी वक्त ही पलटे हैं और फिर कहते हैं कि मैं मक्का जा रहा हूँ। उन्होंने नहाए धोए हैं, कपड़े चेंज किए, अपना पैकअप किया, मक्का गए हैं। और एक वक्त ये आ गया था कि उनको कहा जाता था इमाम फजैल बिन अयाद। चाहे वो फिक्र आप उठा लें, अहादीस देख लें, हिस्ट्री देख लें, उनमें आपको कहीं ना कहीं पार्ट उनका जो, ही हैज़ प्लेड अ वेरी बिग रोल, फजैल बिन अयाद रहमहुल्लाह। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह हमारे लिए आसानी पैदा फरमाएं। यू नो आप, यू हैव अल्हम्दुलिल्लाह, यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप, यू नो, टू कम ओवर हियर, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन मज़ीद डू नॉट स्टॉप इन दिस प्लेस, आगे जाएँ और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ, यू नो, टेक अवेज लेके जाया करें अपने साथ इंशाल्लाह। आई विल गेट बैक टू द टॉपिक, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक ये है कि टेक इट एज अ कोर्स, चाहे वो कोर्स ले लें आप, या समझिए आप क्लास में बैठे हैं, ठीक है। हम बेसिकली करने लगे हैं, इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तफसीर पढ़ेंगे आयतुल कुर्सी की, ऑल राइट। उसमें ये होगा कि मैं आपको इंशाल्लाह कुछ चीज़ें बताऊंगा, अहदीस हैं, आयात हैं। आई वॉन्ट यू गाइज टू नोट एवरीथिंग डाउन एज मच एज पॉसिबल, जितना आपके साथ, यानी आपसे हो सकता है आप वो नोट डाउन करें ताकि वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाए। और ये इंशाल्लाह आई आस्क अल्लाह सुबहान व तआला कि जो मैं इंटेंशन लेके आया हूँ ना, वो अच्छे तरीके से आपके सामने जो है मैं पेश भी कर सकूँ, और आपको जो मैं सोच रहा हूँ वो इंशाल्लाह आप तक मैं पहुँचा सकूँ। तो इसमें ये है कि इट विल नॉट बी एज इफ के आई विल बी रिसाइटिंग द कम्प्लीट आयतुल कुर्सी और आपको एक आध क्लास में इंशाल्लाह इसको हम वाइंड अप करेंगे, इट वुडंट बी लाइक दिस। बल्कि हो सकता है हमें हमारी 5 जो है सेशंस इसमें लग जाएं, हो सकता है 7 लग जाएं। तो आई वुडंट हरी इसको ख़त्म कर, या हमारा, मेरा ये मकसद नहीं होगा कि उसको हम जल्दी जल्दी फटाफट ख़त्म करें, ठीक है। तो ये कुछ ये है कि आपको पहले बताना था कि बी प्रिपेयर्ड इंशाल्लाह। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसकी वजह ये है कि एक बार ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उबई बिन काब के पास बैठे हुए थे, रज़ियल्लाहु अन्हु, ए अबुल मुंदरी उनकी कुन्नियत है, अतदरी अय्यु आयतिन मिन किताबिल्लाहि मअका आज़म, क्या तू जानता है कि सबसे अजीम आयत कुरान मजीद की क्या है, कौन सी आयत कुरान मजीद की अजीम तरीन है। अब देखें, अल्लाह ताला का कलाम, जितनी भी अल्लाह ताला ने बुक्स रिवील की हैं, इंजील है, तौरात है, ज़बूर है, ठीक है, और भी बहुत सारी हैं, उन सब किताबों में, आसमानी किताबों में जो फुल और कंप्लीट हिदायत है ना, वो है कुरान मजीद, ठीक है। और कुरान मजीद में भी अब देखें सुबहानअल्लाह, यानी हुदल्लिन्नास है, ये हुदल्लिल्मुत्तकीन है, सारे लोगों के लिए हिदायत है, ऑलरेडी कितनी अजीम बात है। और पूरे कुरान में कौन सी आयत ऐसी होगी जो अजीम तरीन होगी, क्या उसकी शान होगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, या अबुल मुंदर, ए अबुल मुंदर, कौन सी आयत, मुझे ये बताओ कौन सी आयत कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा अजीम तरीन है। तो सहाबा कराम का ना मामूल हुआ करता था, उनको अगर जवाब आता भी होता था ना, वो जवाब बताते नहीं थे, वो ज़रा ना अपना डेकोरम मेंटेन करते थे। क्योंकि आप देखें सुबहान अल्लाह, पूछ कौन रहा है, अल्लाह ताला के रसूल पूछ रहे हैं, जिनको, यानी अल्लाह ताला वही के ज़रिए से गैब की बातें भी बताते हैं। तो उनका मामूल ही हुआ करता था अल्लाह व रसूलहू आलम, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्ताज भी हैं, ही इज़ द टीच, यू नो ही इज़ द, यू नो टीचर ऑफ द टीचर्स, ही इज़ द बेस्ट बेस्ट ऑफ द टीचर्स। कहते हैं उन्होंने फिर इंसिस्ट किया कि नहीं ए उबई तुम मुझे बताओ। तो जब उन्होंने इंसिस्ट किया ना ज़्यादा दफ़ा, तो फिर उबई बिन काब कहते हैं अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम। कहते हैं कि आयतुल कुर्सी सबसे अजीम तरीन आयत है। तो जब ये जवाब देते हैं ना, तो नबी करीम सल्लम क्या करते हैं, फ़दरब अला सदरी, उनके सीने पे हाथ मारते हैं और कहते हैं वल्लाही लियहनिकल इल्म या अबल मंज़र, कि अल्लाह ताला यानी खुदा की कसम तुम्हें तुम्हारा ये इल्म मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर नॉलेज। यानी उन्होंने बिल्कुल सही जवाब देते हैं। तो अब ये नरेशन इट्सेल्फ इस आयत की कदर व मंजिलत जानने के लिए हमारे लिए मोर देन इनफ है, काफ़ी है। और क्यों ये अजीम तरीन है, क्योंकि इस आयत में तौहीद की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? अच्छा, मैंने इंशाल्लाह आपसे ना जवाब भी मैं एक्सपेक्ट करूँ कि आप ना इंशाल्लाह मेरे साथ इंटरेक्शन करें, और हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा एंड आफ्टर सम टाइम मैं आपसे रिकॉल करवाऊँगा, अच्छा जो मैंने अभी बात की थी मैंने क्या बात की थी। तो यू हैव टू बी अटेंटिव इंशाल्लाह। ऑलराइट, आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला का इस्म आज़म है। आज़म का मतलब एक होता है लफ्ज़ अज़ीम, अज़ीम का जो ऊपर वाला लेवल है उसको कहते हैं आज़म, यानी अल्लाह ताला का सबसे बेहतरीन नाम वो आयतुल कुर्सी में पाया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु वो नरेट करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन इस्मुल्लाहिल अअज़म लफी थलाथी सुवरिन फिल कुरान, कि अल्लाह ताला के जो इसमें आज़म है ना, जो अजीम तरीन नामों में से जो नाम है, वो तीन सूरतों में पाए जाते हैं। और उन सूरतों के नाम क्या हैं? फी सूरतिल बकरा व आल इमरान व सूरत ताहा, और यानी सूरत ताहा में हैं। कौन कौन से सूरतों के मैंने नाम लिए? सूरत ताहा, माशाल्लाह, तीन सूरतों में पाए जाते हैं। और फिर अबू उमामा कहते हैं फल तमस्तुहा, मैंने फिर ढूंढने की कोशिश की और फवजदतु फी सूरतिल बकरा, तो मुझे सूरह बकरा में आयत मिली अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय अल क़य्यूम। ये सूरह बकरा में उनको ये आयत मिली। और फिर कहते हैं वफी सूरत आल इमरान अलिफ लाम मीम, जब सूरह आल इमरान शुरू होती है ना तो ये पहली आयत हैं, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय अल क़य्यूम। तो सूरह बकरा में भी आ गया और सूरह आले इमरान में भी आ गया। और सूरह ताहा में आता है वअनतिल वुजूह लिल हय्यिल क़य्यूम। तो तीनों सूरतों में अल हय अल क़य्यूम ये आ रहा है, ठीक है। वअनतिल वुजूह का मतलब ये होता है कि हम्बल फेसेस, के क़यामत के दिन का नक्शा खींचा जा रहा है कि क़यामत के दिन तमाम चेहरे अल्लाह ताला के सामने हम्बल होंगे, यानी उनके चेहरे झुके हुए होंगे अल हय अल क़य्यूम के आगे। इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह वो कहते हैं कि इन आयात से पता चलता है, इस हदीस से पता चलता है कि अल्लाह ताला के इसमें आज़म अल हय अल क़य्यूम है। और फिर कहते हैं कि अल्लाह ताला के, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा, कहते हैं अल्लाह ताला के बाकी जितने भी नाम हैं ना, अस्माउल हुस्ना, ऐसे आयत आती है ना लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहू बिहा, कि तमाम अच्छे नाम अल्लाह ताला के हैं और उन नामों से अल्लाह ताला को पुकारो। कहते हैं इब्नुल क़य्यिम कहते हैं, एंड ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्कॉलर, कहते हैं कि जो ये जो नाम है ना अल हय अल क़य्यूम, तमाम अल्लाह ताला के जो बाकी नाम है ना, वो इन्हीं दो नामों की तरफ लौटते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला का नाम है मिसाल के तौर पर राज़िक या रज़ाक, ठीक है। अब अल्लाह ताला अल हय हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा हैं। अब देखें जैसे सूरह हदीद में आता है हुवल अव्वल वल आखिर, अब अव्वल वल आखिर अल हय की तरफ लौट रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला अल हय है, वो उस वक्त से हैं जब कोई भी शय नहीं थी, कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन अल्लाह ताला थे हुवल अव्वल। और एक वक्त आएगा कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, अल्लाह ताला होंगे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला होंगे अल आखिर। ये दोनों नाम भी अल हय की तरफ लौट रहे हैं। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, आपको समझ में आ रही है ना इंशाल्लाह। ऑलराइट, और फिर कहते हैं इब्न कय्यम कि लिहाजा अब करने का काम यह है ए लोगो, जब भी अल्लाह ताला से मांगो ना तो ये दो नाम लेकर पुकारा करो। अल्लाह ताला से जब मांगना हो ना तो अल्हय अल-क़य्यूम कह के पुकारो, अल्लाह ताला ज़रूर अता करेंगे। तो अलहम्दा दिस इज़ वन ऑफ द टेक अवे आप लेके जा सकते हैं कि अब यानी अब से आप दुआ मांगे ना तो अल्लाह ताला जहाँ पे कहते हैं जब आप कहते हैं कि या अरहमर राहिमीन, या अज़ीज़ या गफ़ार, या हय्यू या क़य्यूम, ये दो अल्फाज भी जो नाम है ये भी बीच में आप इंसर्ट करें। अच्छा, एक और रिवायत में आता है कि बल्कि रिवायत से पहले मैं आपको जो है कुछ आयात सुनाता हूँ कि हमें ये बताया जाता है, नरेशंस में आता है कि जो आयतुल कुर्सी पढ़ता है ना शैतान उससे दूर भाग जाता है। राइट, और कुरान मजीद की बहुत सारी आयात हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। शैतान डे फर्स्ट से लगा हुआ है कि तमाम इंसानों को अपने साथ जहन्नम में घसीट कर लेके जाए, और उसने कसम उठाई थी, सिर्फ यानी एक बार नहीं बार बार कुरान मजीद में उसका जिक्र आता है। कहता है फबिइज्जतिक लउग्वियन्नहुम अजमाइन, फबिइज्जतिक, अल्लाह ताला की इज्जत की कसम उठाता है, ए अल्लाह आपकी इज्जत की कसम मैं लाजिमन इन सब को गुमराह करूंगा और अपने साथ इनको जहन्नम में लेके जाऊंगा। फबिइज्जतिक लउग्वियन्नहुम अजमाइन, और एक और जगह में कहता है फबिमा अग्वैतनी, के अल्लाह जो आपने मुझे यानी गुमराह किया, उसने अपनी गुमराही अल्लाह ताला के नाम पे डाल दी। मिसाल के तौर पे आज भी कुछ ऐसे लोग हैं गलत काम खुद करते हैं लेकिन यू नो वो फिर इस्केप रूट ढूंढ रहे होते हैं कि देखो अल्लाह ताला ने तो डेस्टिनी लिख दी हुई है, ये तो अल्लाह ताला ने लिख दिया हुआ, तो अल्लाह ताला ने लिखा है इसलिए मैंने गुनाह किया, ये आर्ग्यूमेंट लेके आते हैं। ये अभी का आर्ग्यूमेंट नहीं है, शैतान ने ये स्टार्ट किया था। कहता है ए अल्लाह आपने मुझे गुमराह किया है, फबिमा अग्वैतनी लअक्उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं लाजिमन लाजिमन आपके सीधे रास्ते में बैठूंगा। और अब ड्यूरिंग दिस सेशन मैं एक और काम ये करूँगा इंशाल्लाह, जहाँ पे मुझे ज़रूरी लगा ना कुछ ग्रामर बीच में इंसर्ट करना तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा, और आई ट्राई टू मेक इट ईजी फॉर यू गाइस ताकि आप थोड़ा सा ना अप्रिशिएट कर सकें कि किस तरीके से बात की जा रही है। लअक्उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं लाजिमन आपके सीधे रास्ते पर बैठूँगा। आप अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ के आए हैं, आपने हर रकत में अल्लाह ताला से एक चीज़ मांगी है, क्या मांगा है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। और कभी कभी भी जब मैं सोचता हूँ ना इट रियली सरप्राइजेज मी कि इंसान की नमाज नामुकम्मल है जब तक वो सूरह फातिहा ना पढ़ ले। कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, आप हर नमाज में नहीं हर रकत में सूरह फातिहा पढ़ते हैं और अल्लाह ताला से सिरात मुस्तकीम की तरफ आप हिदायत मांगते हैं। और सिरात मुस्तकीम यानी स्कॉलर्स कहते हैं इसमें सिर्फ ये नहीं है कि हमें सीधा रास्ता दिखा दें, सीधा रास्ता दिखाने के साथ साथ हमें सीधे रास्ते पर चलने की भी तौफीक अता फरमाएं, दोनों चीज़ें आप मांग रहे होते हैं। एंड गेस व्हाट, अभी हमें पता चला है कि शैतान उस सिरात मुस्तकीम पर बैठा हुआ है। तो हमें धोखे में नहीं आना चाहिए, अगर बंदा फॉर एग्जांपल पांच वक्त की नमाज पढ़ रहा है, चैरिटी दे रहा है, रोज़े रख रहा है, ज़कात दे रहा है, तो समझ बैठे कि जी मेरा अब मैं ठीक हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होगा, शैतान विल नॉट हार्म मी। नहीं, ये भी शैतान का एक वसवसा है, शैतान उसको ज़्यादा अटैक करेगा क्योंकि बाकी लोग तो ऑलरेडी जो शैतान कह रहा है वो ऑलरेडी उस ट्रैक पर चले हुए हैं, तो शैतान इज़ मोर कंसर्न अबाउट यू कि ताकि आपको डिट्रैक करे सिरात मुस्तकीम से। तो लअक्उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम थुम्मा लआतीयन्नहुम मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, ए अल्लाह फिर आप देखिएगा मैं लाजिमन लआतीयन्नहुम, द वे ही इज टेकिंग एन ओथ, और ये कसम उठा रहा है मैं लाजिमन इनके सामने आऊंगा, इनके सामने से भी इनको अटैक करूंगा, पीछे से भी आऊंगा, राइट से आऊंगा, लेफ्ट से आऊंगा, यानी कहने का मकसद ये है कि मैं कोई ओकेजन नहीं छोड़ूंगा, मैं कोई जगह नहीं छोड़ूंगा, हर जगह से मैं अटैक करूंगा। और ऐ अल्लाह, आपने इस इंसान के लिए मुझे जन्नत से निकाला है ना, आप देखिएगा वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, इनमें से अक्सरियत ना शुक्रे होंगे। और आपस की बात है बॉयज, क्या वाकई अगर हम अपने आज मुआशरे में देखें, सोसाइटी में देखें, दुनिया में देखें, क्या वाकई शैतान ने जो दावा किया था वो पूरा करके अभी तक दिखाया नहीं है? दिखा दिया। और अल्लाह ताला इंडोर्स करते हैं, कहते हैं वकलील उम्मिन इबादी शुकूर, मेरे इबाद में, मेरे बंदों में बहुत थोड़े हैं जो शुक्र करते हैं मेरा। तो और एक और आयत है सूरह निसा, शैतान ने कहा था वकाला लअत्तखिज़न्न मिन इबादिका नसीबन मफरूदा, अल्लाह ताला को कहता है कि मैं लाजिमन ले लिया करूंगा अपना हिस्सा आपके बंदों में से। क्या मतलब कि जो आपके बंदे हैं ना, वो आप देखेंगे कि आपके नाम के बगैर गैरुल्लाह पे नजर व नियाज कर रहे होंगे ये। और लअत्तखिज़न्न, मैं लाजिमन ऐसा करूंगा। और फिर कहता है वला उदिल्लन्नहुम, मैं इनको लाजिमन गुमराह करूंगा। वला उमन्नियन्नहुम, और ऐसी ख्वाहिशात इस बंदे के अंदर डालूंगा कि वो डिट्रैक हो जाएगा। उसका जो असल मकसद है ना, उसका मकसद था कि इस दुनिया में अगर उसको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, उसको इस दुनिया फ़ानी से नेक आमाल करके जन्नत अचीव करनी है। नॉट यू नो ही शुडंट लिव विद द स्लोगन यो लो कि तुम यानी दुनिया में आए हो, एक बार आए हो और अयाशी करते रहो। नो, इस दुनिया फ़ानी से नेक अमल करोगे तो इसका आपको जो रिवॉर्ड होगा वो हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए वो रिवॉर्ड होगा। वाला उमन नियन ना हूं, मैं इनको डिज़ायर्स में इनको फंसा के रख दूंगा। वाला आमरन ना हूं, और मैं इनको लाजिमन हुक्म दूंगा। फला युगय्यिरुन खल्कल्लाह, वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं इनको लाजिमन हुक्म दूंगा कि ये तगय्युर कर दें, चेंज कर लें अल्लाह ताला की खलकत को। आप माशाल्लाह ज़्यादा इंटरनेट जो है यूज़ करते हैं, देर आर पीपल नाउ कि वो सर्जरी करवाते हैं, फेशियल सर्जरी, और पर्पसफुली जानबूझ के अपने चेहरों को, आपको पता है पीपल आर मेकिंग देयर फेसेस एज अ कैट, जानवरों की शक्ल बना रहे हैं। पीपल आर इवन मेकिंग फेसेस यू नो ऑफ अदर एनिमल्स, और ऐसे भी आपको फीमेल्स मिल जाएंगी कि दे वॉन्ट टू बिकम द रियल लाइफ बारबी, वो सर्जरी करवाते हैं। एंड हैविंग सेड दैट, आज जो फ्रीडम का जो नारा लगता है ना कि आप फ्री हो, आप जो चाहे कर सकते हो, देयर इज अ पर्सन फॉर इंस्टेंस, उसका दिल कर रहा है कि नहीं, आई हैव अ फीलिंग एज इफ आई एम अ वुमन इन द इनसाइड, कि मैं अंदर से, मुझे जो है ना, मैं हो सकता है कि मैं औरत हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का नहीं हूँ। एंड वाइस वर्सा, एक लड़की है वो कहता है कि आई एम नॉट हैप्पी बींग अ फीमेल, आई एम नॉट हैप्पी बींग यू नो बींग अ गर्ल, मैं जो है अपना जेंडर चेंज करना चाहती हूँ। तो होता क्या है कि आज ऐसी सर्जरीज अवेलेबल हैं, और होता क्या है कि वो इसी आयत के ज़ुमरे में आता है फला युगय्यिरुन खल्कल्लाह, और ऐ अल्लाह आप देखेंगे कि ये अल्लाह ताला की खलकत को चेंज करेंगे। अल्लाह ताला ने इनको ऐसा नहीं बनाया होगा, लेकिन ये अपनी मर्जी करेंगे। फला युगय्यिरुन खल्कल्लाह, और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं यईदुहुम, ऐ मेरे बंदो, ये जो शैतान है ना, तुम्हें तुम्हारे साथ वादे करता है कि देखो कोई मसला नहीं है, इंजॉय कर लो, तुम्हारा भी वक्त आएगा, एक राइट टाइम आएगा, तब तुम तोबा कर लेना, अभी क्या जल्दी है, अभी तो तुम जवान हो, अभी तो तुम्हारे अंदर पावर है, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू कैन डू इट। यईदुहुम, शैतान जो है तुमसे वादे करेगा, वयुमन्नीहिम, और तुम्हें बड़ी बड़ी तुम्हें ख्वाहिशात में इन्वॉल्व कर देगा कि ये कर लो, अपना फॉर्चून बना लो। चैरिटी क्यों देनी है, अगर तुमने बाहर माल दे दिया तो तुम्हारा क्या बनेगा, तुमने भी तो पैसा कमाना है ना सारा, तुमने इतना मुश्किल से पैसा कमाया है, वाई आर यू गिविंग इट टू समबडी एल्स एनी वे। वयुमन्नीहिम, और उनको झूठी डिजायर्स में इन्वॉल्व कर देगा। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा यईदुहुम وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان کے جتنے بھی وعدے ہیں نا وہ سب کے سب دھوکہ ہے، شیطان کے وعدہ سارا کا سارا دھوکہ ہے۔ اور پھر ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں الرٹ کر رہے ہیں کہ جو شیاطین ہیں نا، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، اے میرے بندو جو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے نا، عدو مبین، وہ اور اس کے قبیلے والے باقی شیاطین تمہیں اس جگہ سے دیکھتے ہیں کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، تم شیاطین کو نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا یہ آیات میں نے کیوں آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں؟ یہ آیات صرف اگر آپ پڑھ لیں گے نا، یو وڈ تھنک کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ہم ایسے دشمن کو کیسے ہرا سکتے ہیں جس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، ہاؤ وڈ وی یو نو ون فرام دس اینیمی۔ لیکن سبحان اللہ، کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہ ہمیں دنیا میں بھیج دیا ہے اب ہم جو چاہے کرتے پھریں اور اپنی کوشش کرتے پھریں کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کر دی ہوئی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا آپ یہ کہہ لیں کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی کہ جہاں پہ ہماری وہاں پہ ہدایت نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پہ ہمیں ہدایت جو ہے ہمارے لیے جو ہے کھول کھول کر بیان کر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ان کو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صدقے کا مال تھا، اس پہ ان کو کہا کہ تم رکھوالی کرو، اس کو پروٹیکٹ کر کے رکھو، اور پھر جب چاہیے ہوگا پھر میں تم سے منگوا لوں گا صدقے کا مال۔ تو کہتے کہ آئیں کہ رات کا وقت ہے، میں نے دیکھا کہ ایک شخص آتا ہے اور دونوں ہاتھ بھر بھر کے غلہ لے رہا ہے، مال لے رہا ہے۔ میں نے اس کو پکڑ لیا، اور جب میں نے اس کو پکڑا تو میں نے کہا واللہ لأرفعنک الی رسول اللہ، کہ میں خدا کی قسم اب تجھے جو ہے نا رسول اللہ کے پاس لے کے جاؤں گا۔ اب وہ شخص کہتا ہے جو پکڑا گیا جو چور ہے، کہتا ہے انی محتاج، کہ میں محتاج ہوں، مجھے جو ہے ضرورت ہے، وعلی عیال، اور میرے پیچھے بچے بھی ہیں اور وہ بھوکے ہیں، ولی حاجۃ شدیدۃ، اور مجھے بہت زیادہ شدید ضرورت ہے اس مال کی، میں بھوکا ہوں، اور بہت اصرار کرتا ہے ابو ہریرہ کے سامنے۔ تو ابو ہریرہ کو اس پہ ترس آ جاتا ہے، تو وہ لیٹس ہم گو، جانے دیتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے جب ابو ہریرہ آتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہی ڈزنٹ سے اینی تھنگ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں یا ابا ہریرہ، او ابو ہریرہ، ما فعل اسیرک البارحہ، کہ واٹ ہیپنڈ ود یور پرزنر لاسٹ نائٹ۔ ابو ہریرہ تھوڑا سا وہ کہتے ہیں اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل آیا تو تھا ایک چور آیا تھا، اور اس نے یا رسول اللہ شکا حاجتا شدیدتا، اس نے اپنی حاجت کی شکایت کی تھی کہ مجھے ضرورت ہے، وعیالا، اور میرے بال بچے بھی ہیں، فرحمتہ فخلیت سبیلا، اور مجھے اس پہ پھر رحم آ گیا، پھر میں نے اس کی میں نے کہا چلو چھوڑ دو، اس کو جانے دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے ہیں اما انہ قد کذبک وسیعود، اے ابو ہریرہ، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے، اور دیکھ لینا وہ آج دوبارہ تیرے پاس آئے گا۔ اور ہوتا یہی ہے کہ رات کو ابو ہریرہ ہی از ویٹنگ، اور جب رات کا کچھ حصہ گزر جاتا ہے تو وہی شخص واپس آتا ہے اور دوبارہ غلہ چوری کرنے لگ جاتا ہے، تو دوبارہ یہ پکڑ لیتے ہیں۔ جب پکڑتے ہیں کہتے ہیں لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، میں تجھے اب تو لازماً رسول اللہ کے پاس لے کے جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ کہتا ہے کہ دعنی، پلیز مجھے چھوڑ دو، فَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عَيَالٌ لَا أَعُودُ، میں تو ضرورت مند ہوں، میرے بال بچے بھی ہیں، مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے، اچھا لا اعود، میں اب واپس نہیں آؤں گا۔ بہت زیادہ منتے ترلے کرتا ہے، اور ابو ہریرہ کو پھر اس پہ ترس آ جاتا ہے، ہی لیٹس ہم گو۔ پھر اگلے دن صبح ابو ہریرہ جب جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا ابو ہریرہ، ما فعل اسیرک البارحہ، کہ کل کیا ہوا تمہارے ساتھ، وہ چور جب آیا تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ دوبارہ آیا تھا، तो उसने काफ़ी जो है रिक्वेस्ट की थी कि मैं बड़ा मुझे ज़रूरत है और अब मैं नहीं आऊँगा वापस, आई वुडंट कम बैक अगेन। तो कहते हैं कि फिर वही बात कहते हैं कि अमा इन्नहु कद कज़बका वा सयऊद, ए अबू हुरैरा तू देख नहीं वो तो झूठ बोलने वाला है, वो दोबारा लाजिम तेरे पास आएगा। थर्ड यानी थर्ड नाइट, तीसरी दफ़ा क्या होता है, अबू हुरैरा फिर ही इज़ वेटिंग फॉर दैट गाय। और होता यह जब रात का कुछ हिस्सा गुजर जाता है, दैट थीफ कम्स अगेन, वापस आता है और फिर माल चोरी करने लग जाता है। अब तो इनको बड़ा गुस्सा आता है अबू हुरैरा को, कहते हैं लारफान न कह रसूलुल्लाह, अब तो मैंने तुझे छोड़ना नहीं है, वहादा आखिर सलासी मर्रात, अब तू तीसरी दफ़ा आया मेरे पास, इन्नका तज़ुमु ला तऊद, तू तो बार बार कहता है कि मैं वापस नहीं आऊँगा, तू दोबारा आता रहता है। तो फिर अभी जो चोर है ना, कहता है दानी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अब जो अगली बात कहने लगा है चोर, कहता है उअल्लिमुका कलिमातिन, मैं आपको कुछ कलिमात सिखाता हूँ, यनफ़ाउकल्लाहु बिहा, जिससे अल्लाह ताला आपको नफ़ा देंगे, अल्लाह सुबहाना व ताला विल बेनिफिट यू। अबू हुरैरा बोलते हैं मा हुन्ना, क्या कलिमात हैं वो? कहते हैं इज़ अवैत इला फराशिका, जब तुम रात को अपने बेड पे जाने लगो ना, फ़क्रा आयतल कुर्सी, आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो। और फिर उसने तिलावत की, अल्लाहु ला इलाह, चोर तिलावत कर रहा है, अल्लाहु ला इलाह इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, एंड तक बताता है कि आपने वहुवल अलीयुल अज़ीम तक पढ़नी है, हत्ता तख़्तिम अल आया। और फिर कहते होगा क्या, फ़इन्नका लन यज़ाल अलैका मिन अल्लाहि हाफिज़, फिर होगा क्या कि अल्लाह ताला एक हाफिज़, एक गार्ड तुम्हारे लिए मुकर्रर कर देंगे, वला यक़रबन्नका शैतानुन हत्ता तुस्बिह, फिर हरगिज़ तुम्हारे पास शैतान नहीं आएगा यहाँ तक कि तुम सुबह ना कर लो। ये सुनना था। अच्छा, अबू हुरैरा के बारे में आता है कि सुभान अल्लाह, आप देखें तीसरी दफ़ा तो उन्होंने पकड़ लिया। अबू हुरैरा वॉज सो इंटरेस्टेड इन गेटिंग द दीन नॉलेज, यानी वो नॉलेज के लिए इतने हरीस थे कि उनको जब ये अच्छा बेनिफिशियल नॉलेज मिल गया ना, तो उन्होंने उसको जाने दिया, यू कैन गो नाउ, तूने बड़ा अच्छा अच्छी बात की है। व्हाट हैपेंड कि जब अगले दिन सुबह आया अबू हुरैरा, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं मा फ़अला असीरुक अल-बारह, कल क्या हुआ तुम्हारे प्रिजनर के साथ, कैदी के साथ? तो कहते हैं या रसूलल्लाह, उसने तो ज़अमा, यानी उसने मुझे यकीन दिलाया था कि अब वो वापस नहीं आएगा, और उसने कहा कि उस ऐसे कलिमात मुझे सिखाए कि जिससे अल्लाह ताला मुझे बेनिफिट करेंगे, वो कलिमात जो हैं मेरे लिए वो बेनिफिशियल होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा हिया, क्या कलिमात सिखाए हैं उसने? कहते हैं कि कहता है वो चोर ने कहा कि जब तुम बिस्तर पे जाया करो ना रात को सोने से पहले, तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए एक मुहाफिज़ मुकर्रर कर देंगे, गार्ड, और फिर शैतान तुम्हारे पास नहीं आएगा यहाँ तक कि तुम सुबह ना कर लो। नबी करीम सल्लम का जवाब क्या था? जवाब उनका था अमा इन्नहु कद सदक़क, ऐ अबू हुरैरा, उसने तेरे साथ बिल्कुल सच कहा है। और फिर आगे कहते हैं वह हुआ कज़ूब, और वो बहुत झूठा है। अच्छा, अब थोड़ा सा आप कज़ूब के ऊपर बारे में ना मैं बात करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा वह हुआ कज़िबुन, कज़िब कहते हैं झूठे को कहते हैं, ऑलराइट? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? कज़ूब। अच्छा, अरबिक में ना कुछ पैटर्न्स होते हैं, उससे आपको उस इस्म के बारे में, नाउन के बारे में पता चलता है। मिसाल के तौर पे कज़ूब के पैटर्न पे शकूर आता है। आप शकूर, अब देखें यानी शकूर का एक दूसरा एस्पेक्ट है शाकिर। शाकिर का मतलब है शुक्र को एक्सेप्ट करने वाला, शुक्र करने वाला, राइट? शकूर का मतलब यह है बहुत ज़्यादा शाकिर, यानी इसमें एग्जैजुरेशन पाई जाती है, मुबालगा पाया जाता है, ऑलराइट? इसी तरह मुझे और ज़रा नाम बताएं इसी पैटर्न पे। गफूर एक नाम है, गाफिर, गाफिर का मतलब तोबा कर, यानी कबूल करने वाला, ठीक है? गफूर का मतलब क्या होगा? बहुत ज़्यादा बख्शने वाला, ठीक है? नाउ आई एम गेटिंग बैक टू द टॉपिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वह हुआ कज़ूब, वो बहुत ज़्यादा झूठा है, वो बहुत बड़ा झूठा है। और फिर फरमाते हैं वह हुआ शैतान, वो शैतान था अबू हुरैरा जो तेरे पास आता रहा तीन दिन। इस स्टोरी से हमें क्या मिलता है, उसने क्या बताया, मुझे बताएं किस तरह आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रात को बेड पे जाने से पहले इफ यू विल रिसाइट आयतुल कुर्सी तो अल्लाह ताला एक गार्ड मुकर्रर कर देते हैं। उस गार्ड का क्या कहना होगा मुझे बताएं आप, जो अल्लाह सुबहाना व ताला ने मुकर्रर किया होगा, अपॉइंट किया होगा, तो क्या किसी बंदे को टेंशन होनी चाहिए फिर? हत्ता तुस्बिह, यहां तक के बंदा सुबह नहीं कर लेता। अच्छा, मैं आपके दो और नरेशन बताऊंगा इंशाल्लाह, फिर हम इसको जो है जमा करेंगे। तो इस पहली नरेशन में पता चला है, ये मैं आपसे पूछूंगा भी इंशाल्लाह, कि पहली नरेशन से हमें पता चला है कि रात को सोने से पहले अगर बंदा पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला एक मुहाफिज मुकर्रर कर देते हैं जो बंदे की प्रोटेक्शन करता रहता है सारी रात। अच्छा, इब्न तैमिया रहमहुल्लाह वो कहते हैं वलिहाज़ा इज़ा क़रा अल-इंसान, अगर इंसान पढ़ लेता है ना आयतुल कुर्सी, इन्होंने मजीद खोला है बात को, कहते हैं इंद अल-अहवाल शैतानिया, कि कोई भी ऐसे शैतानी काम हो ना, शैतानी मकर और फरेब वाला काम हो, अगर इंसान आयतुल कुर्सी पढ़ ले तो होता क्या है, अब तलत है, तो वो उस काम को, उस मकर को, उस शैतानी काम जो होता है ना, उसको जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। नॉट ओनली रिसाइटिंग व्हेन गोइंग टू बेड, कोई भी आपको अगर अमल ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको थोड़ा सा खतरा महसूस हो रहा है कि नाउ आई एम स्लिपिंग अवे, कि मैं अब फिसल रहा हूं, मैं गुनाह की तरफ माइल हो रहा हूं, उसी वक्त आयतुल कुर्सी अगर आप पढ़ लेते हैं तो अल्लाह ताला वो जो बुराई का ख्याल है या वो जो अमल है वो आपसे दूर कर देते हैं। ये भी एक बेनिफिट है आयतुल कुर्सी का। एक और हदीस सुनिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग। अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु वो कहते हैं कि मैंने ना अपने घर के एक हिस्से में ना खजूरें रखी हुई थी, तो होता क्या था कि एक जिन्नी आया करती थी, जिन्नी अ फीमेल जिन यूज टू कम, और वो खजूरें ना लेके चली जाया करती थी। और फिर मैंने एक दिन शिकायत की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ऐसा ऐसा मेरे साथ मामला हो रहा है, मैंने तो खजूरें रखी हुई हैं लेकिन एक फ़ीमेल जिन आती है वो जो है खजूरें लेके चली जाती है, व्हाट शुड आई डू? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़हब, आप चले जाओ, इज़ा रअयतहा फ़क़ुल बिस्मिल्लाह अजीबी रसूलिल्लाह, कि अब तुम्हें अगर वो नज़र आए ना तो तुमने बिस्मिल्लाह कहना है और कहना है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हो जाओ, उनके पास आ जाओ। तो होता क्या है कि वन नाइट, अगली रात में वो उस जिन्नी को पकड़ लेते हैं, उस फीमेल जिन को जब पकड़ लेते हैं ना तो वो कसम उठाती है कि मैं अब वापस नहीं आऊँगी, दिस इज़ द लास्ट टाइम, आई विल नॉट रिटर्न। तो अगले दिन सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछते हैं मा फ़अला असीरुका, कि तुम्हारा जो कैदी था क्या मामला बना उसके साथ? तो कहते हैं हलफत, उसने कसम उठाई थी अल्लाह तऊद कि वो वापस नहीं लौटेगी, इसलिए मैंने उसको जाने दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या रहबत, उसने झूठ बोला है, वही मुआविदतुन लिल्कज़्ज़ब, और ये उस शख्स की, उस फीमेल जिनकी आदत है झूठ बोलना, वो झूठ अक्सर झूठ ही बोला करते हैं। इस तरह दोबारा सेकेंड नाइट द सेम थिंग हैपन्स, वो जाने देते हैं। थर्ड टाइम जब तीसरी दफ़ा आती है ना तो दोबारा पकड़ लेते हैं, और फिर वो फीमेल जिन कहती है कि इन्नी ज़ाकिरतुन लक शैअन, मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ, अगर तुम वो पढ़ लोगे ना, तो यानी क्या कहती है, आयतुल कुर्सी पढ़ लो, इकरा हा, इसको पढ़ा करो, फी बैतिक, अपने घर में, फला यक़रबुका शैतानुन वला गैरुह, वेरी इंपॉर्टेंट, कहती है कि ना कोई शैतान तुम्हारे घर में आएगा, वला गैरुह, और ना कोई और नुकसान पहुंचाने वाली शय तुम्हारे घर में एंटर करेगी, नॉट ओनली शैतान, ये पढ़ लिया करो। तो ये जब कहती है तो फिर जो है रिक्वेस्ट भी करती है, नाउ यू नो आई विल नॉट रिटर्न, और फिर वो वापस उसको छोड़ देते हैं. फिर द नेक्स्ट डे जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं तो सारा मामला बताते हैं, माजरा बताते हैं. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं सदकत, उसने सच कहा, वही कज़ूब, वही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि उसने सच कहा लेकिन वो बहुत ज़्यादा झूठी है. ऑलराइट, तो इस नरेशन से हमें क्या पता चला है? आयतुल कुर्सी कैसे आपको प्रोटेक्ट करती है? अगर आप अपने घर में आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो आपके घर में फिर शैतान नहीं एंटर हो सकता. नॉट ओनली शैतान, कोई भी आपको नुकसान पहुंचाने वाली शय वो एंटर नहीं होगी. अल्लाह ताला आपको प्रोटेक्ट करेंगे. ओके, टू नरेशंस होगी इंशाल्लाह. थर्ड नरेशन की तरफ आता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग इंडीड. उबै बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु वो नरेट करते हैं कि मैं खजूरों को सुखाया करता था, ड्राई किया करता था, और मैंने देखा कि जब मैं सो के उठता था ना, खजूरें कम हुआ करती थी. खजूरें जब सोता था तब, यानी उससे पहले ज़्यादा होती थी, जब मैं उठता था देखे तो मेरा जो है माल कम हुआ यानी हुआ करता था. तो मैं बड़ा परेशान हुआ. तो एक दिन मैंने क्या देखा, रात का टाइम था, जब मैं अपने जहाँ पे मैंने खजूरें फैलाई हुई थी उनके पास, मैं एज एफ कि मैं उनको गार्ड कर रहा हूँ, प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, मैं जब उनके पास खड़ा हूँ ना, एकदम ऑल ऑफ अ सडन वन यंग मैन अपेयर्ड बिफोर मी, मेरे सामने एकदम एक नौजवान लड़का आ गया. तो आई वॉज सरप्राइज कि ये कहाँ से आया है. उसने कहा सलाम अलैकुम, इन्होंने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम. और ये थोड़ा सा सरप्राइज हुए कि ऑल ऑफ अ सडन कैसे आ सकता है. तो इन्होंने सवाल कर लिया, अजिन्नियुन अम इंसियुन, क्या तुम जिन्नात में से हो कि इंसानों में से हो? तो कहता है कि बल जिन्नियुन, कि मैं जिन्नात में से हूँ. तो फिर ये कहते हैं उबै बिन काब कहते हैं अरिनी यदका, मुझे अपना हाथ तो दिखाओ, तुम्हारा हाथ कैसा है? और जब वो अपना हाथ दिखाता है ना लड़का, His hand is as if it's a hand of a dog. ठीक है, इंसानों वाला हाथ नहीं होता उसका, और उसमें ना बाल होते हैं. और फिर उबै बिन काब कहते हैं कि अहाकदा खुलिकल जिन, क्या जिन्नात ऐसे पैदा होते हैं? जिन्नात यानी जिन्नात की खलकत ऐसे ही होती है. तो फिर वो जिन कहता है, वो लड़का कहता है, लकद अलिमतिल जिन्नु अन्नहु लैसा फीहिम रजुलुन अशद्द मिन्नी, कि यकीनन खुदा की कसम जिन्नात सारे के सारे जिन्नात जानते हैं कि मुझसे ज्यादा ताकतवर जिन कोई भी नहीं है. आई एम द मोस्ट पावरफुल जिन अमंगस्ट देम, वो लड़का कहता है. तो फिर उबै बिन काब कहते हैं मा जा अबिक, तू मेरे पास क्या लेने के लिए आयो? तो कहता है कि उनब्बिना, हमें बताया गया, हमें पता चला है, अन्नका तुहिब्बु सदका, कि आपको सदका करना बड़ा पसंद है, फजिना नसीबु मिन तआमिक, तो हम अपना हिस्सा लेने के लिए आए हैं आपसे. ठीक है, अपना हिस्सा लेने के लिए आए हैं. तो फिर अभी अच्छा उनका ना डायलॉग चल रहा है अभी. तो कहते हैं कि मा युजीरुना बिकुम, मा युजीरुना मिनकुम, कि हमें कैसे आपसे प्रोटेक्शन मिलेगी. अच्छा, वाइल आई वॉज रीडिंग दिस नरेशन, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ कि सुबहान अल्लाह, अगर आज हम देखें ना, तसव्वुर करें, आपको पता चल गया जिस शख्स से आप बात कर रहे हैं वो जिन है. अल्लाहु अकबर, हो सकता है आपकी नींदें हराम हो जाएंगी फिर. ठीक है, आप वहां से ऐसे भागेंगे जैसे आपकी जान ही निकल गई है. यू नो देन व्हाट आई थॉट, मैंने सोचा लिटरली कि सहाबा इकराम का ईमान कितना ज़बरदस्त था कि जब उन्होंने कहा था ना कि रब्बी अल्लाह, कि हमारा रब अल्लाह ताला है, तो वल्लाही उनके दिलों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला के साथ थी, सबसे ज़्यादा खौफ अल्लाह ताला के साथ था, और सबसे ज़्यादा भरोसा उनको अल्लाह ताला पे था. आप मेरी बात समझ रहे हैं? सो दिस इज़ वॉट वी हैव टू गेट बिटवीन द लाइन्स. अब देखिए उनकी बातचीत चल रही है, नॉर्मल बातचीत चल रही है. तो कहते हैं मा युजीरुना मिनकुम, हमें आपसे, तुम लोगों से कैसे हम जो है बचेंगे? तो कहता है तक़रा आयतुल कुर्सी मिन सूरतुल बकरा, और फिर कहता है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ऐसा करो सूरे बकरा में आयतुल कुर्सी है उसको पढ़ा करो, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, इज़ा क़रअतहा ग़ुदवतन उजिरत मिन्ना हत्ता तुमसी, अगर तुम ये सुबह पढ़ोगे ना तो शाम तक हमसे बचे रहोगे. وَإِذَا قَرَأْتَ حِينَ تُمْسِي اُجِرْتَ مِنَّ حَتَّى تُصْبِ، اور اگر تم شام کو پڑھو گے نا تو صبح تک ہم تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکیں گے، اس طرح تم ہم سے بچے رہو گے. تو یہ جو پورا جو ان کے ساتھ سینیریو ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگلے دن آتے ہیں اور بتاتے ہیں، سارا ماجرا بتاتے ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صدق الخبیث، کہ اس خبیث نے بالکل صحیح کہا ہے. تو تین نریشنز، اور یہ جو نریشنز میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی نا، یہ اوتھینٹک نریشنز ہیں، اٹس ناٹ اے فکشن، اٹس ناٹ اے فینٹیسی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث ہیں. تو اب ہم ذرا ریکال کرتے ہیں، پہلی حدیث سے ہمیں کیا ملا تھا کہ اگر شخص اپنے بیڈ پہ جانے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ ایک گارڈ اپوائنٹ کرتے ہیں اس شخص کی حفاظت کے لیے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے. اور سیکنڈ نریشن سے کیا پتا چلا؟ آئی نیڈ یور آنسرز. جی، اگر گھر میں آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا تو آپ کے گھر میں نہ کوئی شیطان داخل ہو سکے گا، نہ کوئی ایسی نقصان پہنچانے والی چیز داخل ہو سکے گی. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی ایک گارڈ مقرر کر دیں گے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اینڈ تھرڈ نریشن میں کیا ہے کہ اگر صبح، اور صبح یہ نہیں کہ 8 بجے فجر کی نماز مس ہو رہی ہے اور آپ 8 بجے کالج جانے لگے ہیں چلو پڑھ لیتے ہیں، نہیں، فجر کی نماز کے لیے جب آپ اٹھتے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں فجر کی نماز مس نہ کیا کریں آپ لوگ. فار دیٹ یو ہیو ٹو سلیپ ارلی. میں آپ کو بتاؤں، موبائلز کو ذرا سائڈ پہ کر لیا کریں، اور ہی اپنے آپ پہ یہ جبر کریں، آپ اپنا لائف سٹائل چینج کریں. اگر آپ نہیں کریں گے پھر کون آ کے کرے گا، مجھے بتائیں آپ. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت ہرگز نہیں بدلے گا یہاں تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدل لیں. سو یو ہیو ٹو ٹیک دا انیشیٹو. صبح فجر کی نماز کے لیے جب آپ اٹھتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے اذکار میں آیت الکرسی بھی پڑھیں، اس سے فائدہ کیا ہوگا، شام تک آپ شیطان کے وسوسوں سے، اس کے اٹیک سے بچے رہیں گے. اور شام کو مغرب کی نماز کے بعد جب آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو پھر آپ ساری رات اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جائیں گے اور شیطان آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا. سو فرام دیز تھری نریشنز ہمیں پتہ چلا کہ آیت الکرسی، سبحان اللہ، اٹ ریئلی پروٹیکٹس دا پرسن. وہ پروٹیکشن کے لیے ایک بہت اچھا، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں وظیفے بتائے جائیں، اس سے آسان وظیفہ کوئی ہے، مجھے بتائیں آپ. تو یہ جو ہے اپنی زندگیوں میں انشاءاللہ آپ لے کے آئیں.
اور تینوں
ٹائم شیطان آتے ہیں، جن آتے
ہیں.
اب دیکھیں بات بتائیں کہ اب جیسے حدیث میں آپ نے دیکھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تصدیق کی جب صحابہ کرام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا نا، تو انہوں نے اگلے دن آ کے پوچھا ہے کہ واقعی اگر وہ بات کرے سچ ہے کہ نہیں. تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو سب سے بہترین ٹیچر ہیں، تو انہوں نے انڈورس کیا ہے. اور اب مجھے بتائیں شیطان سے زیادہ بہتر کون بتا سکتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب وہ جن بھی کہتے ہیں نا کہ میں سب سے زیادہ اسٹرانگ جن ہوں، اور لیکن پھر بھی اس سے پروٹیکشن کے لیے یہ بھی بتا دیتا ہے کہ جو ہے اس طرح تم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہو. اچھا، وائل ریڈنگ دس نریشنز نا، بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ سبحان اللہ، آج 1400 سال بعد جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں نا، کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ ہمارا فائدہ ہو رہا ہے. تو وہی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں، اپنی کتاب میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمارے لیے ہدایت ہی ہدایت رکھی ہوئی ہے. اور اگر پھر بھی ہم کمپلین کریں، اور اگر پھر بھی ہم لوگ سیدھے راستے پہ نہ چل سکیں، تو پھر ہماری فالٹ ہے نا، ہماری غلطی ہوئی. ہم آج کرتے کیا ہیں کہ لوگ کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں کہ شیطان سے بچنا بہت مشکل ہے جی، مجھے اپنے اوپر کنٹرول نہیں کیا جاتا میرے اوپر، یعنی میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ان چیزوں سے دور ہے، اس کو نہیں پتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، انما یخش اللہ من عباده العلماء، اللہ تعالیٰ سے خشیت وہی اختیار کرتے ہیں جو علماء ہیں. علماء کا مطلب یہ ہے کہ جو پیپل آف نالج. جب آپ کو نالج ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ اپنے آپ کو کیسے بچا سکیں گے؟ اور اچھا، ایک اور حدیث ہے کہ ایک نماز سے لے کے دوسرے نماز تک آیت الکرسی کیسے پروٹیکٹ کرتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. کہ جو آیت الکرسی پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد تو اللہ تعالیٰ کے وہ ذمے ہے یا اللہ تعالیٰ کی وہ حفاظت میں آ جاتا ہے اگلی نماز تک, اگلی صلاۃ تک. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ جو آیت الکرسی نماز کے بعد پڑھتا ہے نا تو اگلی نماز تک وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو آیا اب کوئی شک رہ جانا چاہیے کہ اس کی پروٹیکشن نہیں ہوگی؟ ہمیں یقین ہونا چاہیے. اور یہ جو بھی چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں نا, فار ایگزامپل آپ نے نماز پڑھی ہے, آپ نے آیت الکرسی پڑھی ہے, آیت الکرسی اس یقین کے ساتھ پڑھیں آپ. اس کو صرف ایک ایسے نہیں کہ آپ نے بس ایک رٹا لگایا ہوا ہے, آپ نے ایک بار پڑھ لیا بس ٹھیک ہے جی میں نے اب یو نو دا جاب از ڈن اور میں اپنا کام کروں. نہیں, یہ سمجھتے ہوئے پڑھیں کہ آپ آیت الکرسی میں, جب انشاءاللہ ہم جب تفسیر میں جائیں گے نا آپ کو پتہ چلے گا کہ آیت الکرسی میں ہے کیا. سمجھتے ہوئے پڑھیں اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ نہیں, اللہ تعالیٰ مجھے پروٹیکٹ کریں گے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے. اور ایک حدیث میں بلکہ آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جیسے میں نے ابھی یقین کی بات کی نا, بہت زبردست آیت ہیں. اور یہ جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں نا, واللہ یہ آیت دس از ون آف دی آیات کہ جس سے میری زندگی چینج ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِن یَنصُرکُم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تمہاری مدد کرنا چاہے نا تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. چاہے تمہارے پاس لیٹ سے کوئی ریسورسز نہیں ہیں, تم اکیلے ہو, لیکن تم یعنی تمہیں کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے رہا, کوئی تمہارا ہاتھ نہیں پکڑ رہا, اور اپیرنٹلی تمہیں کوئی ایسی صورت پیدا نہیں ہو رہی کہ تمہاری کوئی پروٹیکشن کرے گا, تمہیں کوئی پروٹیکٹ کرے گا, تمہیں کوئی سہارا دے گا, لیکن اگر اللہ تعالیٰ تمہیں مدد تمہاری مدد کرنا چاہے نا, اور تمام دنیا والے تم چاہ رہے ہیں کہ تم تک خیر نہ پہنچے, تم تک بھلائی نہ پہنچے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے نا کہ تمہیں پروٹیکٹ کرنا ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا. یہ یقین ہونا چاہیے انسان کو, بھروسہ ہونا چاہیے. اور وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اور اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ دے, تمہارے پاس دنیاوی لحاظ سے ہر قسم کا مال و اسباب ہو, تمہارے پاس مال ہے, تمہارے پاس کوئی بھی چیز تم سوچ لو, ایسٹ ہے, ٹیکنالوجی ہے, ویپنز ہیں, سب کچھ ہے تمہارے پاس, لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھوڑ دیا نا, فَمَنْ ذَلَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِ, تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اور ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, ایمان والے تو اللہ تعالیٰ پہ ہی توکل کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ, اے لڑکے اگر تمام کے تمام لوگ, تمام انسان, تمام جنات, تمام فرشتے, تمام چند پرند, تمام حیوانات اکٹھے ہو گئے ہیں اور تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں, وہ تمہیں ہرگز فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے سوائے اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہوا ہے, ناٹ مور دین دیٹ. اور پھر فرماتے ہیں لو اجتمعوا علی ان یضروک بشیء, اور اگر تمام کے تمام لوگ, تمام کے تمام جنات, فرشتے, تمام مخلوقات ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہے تمہیں ضرر پہنچانے کے لیے, تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے, لم یضروک بشیئن الا بشیئن قد کتب اللہ علیک, اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہوا ہے, اس سے زیادہ نہیں. تو کس پہ بھروسہ کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اور یہ اللہ تعالیٰ گائیڈ کر رہے ہیں ا ینگ صحابی, یعنی ان کی ٹریننگ ینگ ایج سے کی جا رہی ہے. سو تو بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ مسلمان کی پروٹیکشن کریں گے, بندے کی پروٹیکشن کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ آیۃ الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ, کہ یعنی جو شخص ہر نماز کے بعد آیۃ الکرسی پڑھتا ہے نا, لم یمنعہ من دخول الجنہ इल्लल मौत, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है ना, तो उसके लिए कोई रुकावट नहीं होती जन्नत में जाने के लिए सिवाय एक रुकावट के, वो क्या है? अल मौत। उसको जो रोके रखे हुए है ना जन्नत में जाने से, वो मौत है। और मुल्ला अली कारी हैं, बहुत ज़बरदस्त बात करते हैं, मुझे इनकी जो है बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट लगी है। उन्होंने ना बड़े ज़बरदस्त अंदाज में बात करते हैं, कहते हैं कि ऐ अन्नहु ला यमनउ मिन दुखूलिल जन्ना शैउन मिन अल अशिया अलबत्ता। मतलब ये है समझने का कि वैसे भी जन्नत में जाने के लिए एक मुसलमान के लिए ना कोई चीज़ हायल नहीं होती, कोई रुकावट नहीं होती। मिसाल के तौर पे आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आपने अपने किसी अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए जाना है, फॉर इंस्टेंस रास्ते में एक ब्रिज आता है, वो ब्रिज नहीं होगा तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे, राइट? तो ब्रिज जो है, आया आपके लिए रुकावट बन रहा है कि आपके लिए जरिया बन रहा है अपने रिलेटिव से मिलने के लिए? जरिया बन रहा ना, रुकावट तो नहीं बन रहा ना। तो कितनी जबरदस्त बात कहते हैं, बोलते हैं मौत रुकावट नहीं है, ये तो एक ब्रिज है जो आपको जन्नत में लेके जाती है। सुभान अल्लाह, देखिए कितना जबरदस्त जो है पर्सपेक्टिव दे रहे हैं मौत का। तो मौत से आया, मुझे ये बताएं, इंसान को डरना चाहिए कि खुशी से उसको एडमिट करना चाहिए? यानी जब मौत का वक्त आए बंदे को परेशान नहीं होना चाहिए, और मुसलमान मौत के वक्त परेशान नहीं होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके पे मैंने गुजारी है, और नाउ इज द टाइम टू गेट द रिवॉर्ड, अब मैं जन्नत में जा सकूंगा। इसलिए हजरत बिलाल जब ही वॉज गोइंग टू लीव दिस वर्ल्ड, तो हिज वाइफ वॉज वेरी सैड, और कहती हैं वाह हिजना, वट अ डे ऑफ ग्रीफ, कितना आज गम का दिन है। हजरत बिलाल कहते हैं बलकूली वाह फरहा, ऐ मेरी बीवी ये मत कहो, बल्कि कहो आज तो बड़ी खुशी का दिन है। अल्लाहु अकबर, वो इस दुनिया से जाने लगे हैं और कहते हैं ये कहो कि मैं तो आज दुनिया से जा रहा हूँ, ये तो बड़ी खुशी का दिन है, मेरा जो टेस्ट का जो टेन्योर था वो तो ख़त्म हो गया, अब मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, क्योंकि मोमिन जो होता है ना वो अल्लाह ताला से उम्मीद भी रखता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, क्योंकि मोमिन का मामला बैन रजा वल खौफ होता है, वो अल्लाह ताला से डरता भी है और अल्लाह ताला से उम्मीद भी रखता है कि अल्लाह जो मैं ये काम कर रहा हूँ ना, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप मुझे रिवॉर्ड करेंगे, मेरे आमाल का बदला मुझे वहाँ पर मिलेगा। तो कहते हैं बलकूली व फरहा, बल्कि ये कहो आज तो बड़ा खुशी का दिन है, क्यों? कहते हैं गदन अलका हिब्बा मुहम्मद, क्योंकि कल मैं अपने महबूब मोहम्मद से जाके मिलूंगा। तो सुभान अल्लाह, मौत से डरना नहीं चाहिए मुसलमान को, करना ये चाहिए, मौत की तैयारी करनी चाहिए, ताकि जब मौत आए ना बंदा पैनिक ना हो कि ये क्या हो गया। और डरता वही है जो नालायक होता है, जिसने अपनी ज़िंदगी में ना अच्छे काम किए नहीं होते, वो इसी कश्मकश में रहता है, वो इसी यानी आप समझ लें कि कन्फ्यूज़ रहता है कि देखो मुझे जो है, चलो टाइम मेरे पास अभी और है, मैं और जो है एक टाइम, फॉर एग्जांपल अभी मैं पहले अपना एक फ्यूचर बना लूं, शादी कर लूं और अपना बिज़नेस ज़रा सेटअप कर लूं, फिर जाके मैं देखूंगा कि दीन पे चलना या नहीं चलना। मोमिन इज़ प्रिपेयर्ड एवरी टाइम, यानी हर वक्त मोमिन तैयार होता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे टीचर हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त बात कहते हैं कि जब मैं यहाँ पे आया ना, आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिज़नेस, तो कहते हैं कि बेटा आपका क्या प्लान है? तो मैंने बोला शेख मैं 5 साल में आई वॉन्ट टू बी हेयर, और फिर 10 साल का मेरा ये प्लान है, और ये यू नो सो एंड सो फोर्थ। कहते हैं बेटा अपने प्लान में ना एक चीज़ ज़रूर इंक्लूड कर लेना। मैंने बोला व्हाट इज़ दैट शेख? कहते हैं अपनी प्लानिंग में ना मौत को इंक्लूड कर लो। कितनी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि जब तक आपके प्लान में मौत नहीं ना होगी, तो फिर इसका मतलब है कि आप मौत की तैयारी नहीं कर रहे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ज़बरदस्त नरेशन में बताया है कि अक्लमंद वही है मरने से पहले मौत की तैयारी कर ले। تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ہے کہ دیکھیں یہی مطلوب ہے کہ انسان اگر جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے نا, یہی اصل کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا نا اور جنت میں اس کو داخل کر دیا گیا, فقد فاز, یہی تو اصل کامیابی ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے. دنیا نے کسی سے وفا نہیں کی, بڑے بڑے لوگ آئے, بڑے بڑے لوگوں نے چاہا کہ اس دنیا میں اپنی امپائرز کھڑی کی جائیں, ان کی بادشاہت ادھر ہمیشہ ہمیشہ رہے, لیکن آج کسی بھی بادشاہ کا نام و نشان باقی نہیں ہے. آپ کو چلتے پھرتے بادشاہ نظر نہیں آتے, آپ دے آر گون, دے آر ہسٹری. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ کچھ ورچوز تھے آیت الکرسی کے. تو انشاءاللہ پریکٹیکلی اپنی زندگی میں آیت الکرسی کو لے کے آئیں, نماز کے دوران اپنے گھروں میں اس کو عام کریں. اور واٹ آئی وانٹ ٹو ریکویسٹ یو گائز از دیٹ کہ جو آپ نے سیکھا ہے نا, انشاءاللہ کنوے دا سیم ان یور ہاؤسز, ایٹ لیسٹ اپنے گھر والوں کو جا کے بتائیں کہ آج میں نے یہ سیکھا ہے. اور انشاءاللہ اس میں ہوگا یہ کہ جیسے نریشن میں آتا ہے نا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو نیکی کی طرف انوائٹ کرتا ہے نا اور وہ نیکی کرنے لگ جاتا ہے دوسرا بندہ, تو اسی طرح کا اجر اس بندے کو ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہتا ہے, اور اس بندے کا دوسرے جس کو بتایا ہوتا ہے نا اس کا اجر کم بھی نہیں ہوتا. تو اس میں بخیلی نہیں کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.